परम पूज्य महंत श्री रामदास जी महाराज के चरणों में साक्षात दंडवत करते हुए आज के सुज्ञ श्रोतागण को प्रभु के द्वारा जो 24 अवतारों में से एक भगवान वेद व्यास जी है उनके द्वारा जो संदेश मंजूषा पुराण है जो पद्म रूप में विकसित होता है श्रोता और भक्तों के हृदय में, जब पद्म कमल विकसित होता है, मुख कमल विकसित होता है, चरण कमल है और हाथ भी कमल है और नेत्र भी कमल है और उधर में तो कमल है ही है, सहस्रार चक्र है, नाभि कमल है, तो कितने कमलों का संयोग है। इन सभी कमलों के साथ श्रोता के जो मुख कमल है वह विकसित होते हैं, उनका विवार होता है और जब विवार होता है तो उसमें भ्रमरों का जो गुंजन है वह शब्द राशि है, वही भृंग है। तो जो शब्द राशि है वह जाते हैं, मानो वह नायक हैं, किसके तो हृदय रूपी कमल के वो नायक हैं। जब वो अंतःकरण में प्रवेश करते हैं कानों के माध्यम से तो अंतःकरण का हृदय विकसित हो जाता है प्रभु का गुणगान करके, उनके गुणानुवादों को श्रवण करके। तो एकादशी का व्रत तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ में जो द्वादशी है वह भी उससे कम नहीं है। तो आज कुछ द्वादशी का प्रसंग आपको सुनाएंगे जिसको हम भीम द्वादशी कहते हैं, भीम द्वादशी के नाम से जानते हैं। हाँ, तो भीम द्वादशी का वर्णन आता है सृष्टि खंड में। तो भीष्म जी ने कहा, विप्रवर, भगवान शंकर ने जिन वैष्णव धर्मों का उपदेश किया है, भगवान विष्णु के गुरु शिव जी हैं और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो है शिव हैं। वैष्णवानाम अहम शंभु, वैष्णवों में यदि कोई वैष्णव है तो सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं। हाँ, और वो शैव है, भगवान विष्णु शिव का भजन करते हैं और शिव जो है विष्णु का भजन करते हैं। विष्णु हो शिव से हृदय विष्णु, विष्णु हो हृदय शिव, उभयोर अंतरम नास्ति। कहा कि शिव के हृदय में भगवान विष्णु विराजमान है और विष्णु के हृदय में भगवान शिव विराजमान है, एक दोनों हरि और हर एक दूसरे को भजते रहते हैं। अंतर इतना ही है कि हरि में इकार है और हर सीधे सीधे दो आकार वाला है। हरि में तो एक शक्ति लगी हुई है इकार, लेकिन हर में दो दो आकार है, दो दो विष्णु है। ह में भी आकार है, र में भी आकार है, तो वो हर है। हरति पापम इति हरि, हरति संसारम इति हर। कहा कि गोप बधूटी दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार मही रूहस्य बीजाय। जो गोपों के बधूटियों, गोपों की स्त्रियों के वस्त्रों को चुराते हैं और हम लोगों के भी पापों का हरण कर लेते हैं, गोपांगनाओं के मक्खन का हरण करते हैं, अनेक जन्म के पापों का हरण कर लेते हैं, इसलिए हरि और हर है। और उनकी परीक्षा की तो इतनी स्थिति है कि वो भगवान विष्णु के कमल को अभी हरण कर लेते हैं, सहस्त्र कमल में से एक कमल चुरा लेते हैं। तो भगवान हरि अपने इष्ट देव की आराधना के लिए नेत्र कमल अर्पित कर देते हैं। हरिस्ते सहस्रम कमल बलिमादाय पदयो यदो कोने तस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम् गतो भक्त्युत्रेकः पर्ण्यतम शौचक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। तो ऐसी जो भक्ति है वह नेत्र कमल से हो रही है, वह नेत्र पद्म है, वह विकसित होता है, वैसे ही ये जो पद्म पुराण है यह भी यहाँ पर विलसित हो रहा है, नारायण रूपी सरोवर में यह विलसित हो रहा है। नारायण कहते हैं जो जनों का समूह है, नारायणाम समूहो नारम तद आयनम इति नारायण, जहाँ जन जन के हृदय में जन जन जो है नारायण है और उसके हृदय में पद्म पुराण रूपी कमल की जो कथा है वह विलसित हो रही है और हम सब उसके एक एक लोग, एक एक अंग, एक एक वस्तु, उसके हम पंखुड़ियां हैं, क्योंकि पद्म में पंखुड़ियां होती है, उसमें सहस्त्र दल है। सहस्त्र तो उपलक्षण है, उपलक्षण कहते हैं, सहस्त्र नहीं अनंत है, भगवान के अनंत रूप है, अनंत गुण है, अनंत शिर है, अनंत रूपाणि गुणास्तनंता अनंत शीर्षा श्रवणाक्षिनाशा अनंत बाहवस्य पदानि जस्य तम राज राजेश्वर मानतोस्मि, वो राज राजेश्वर है। तो वहाँ असंख्य अप्रमेय जिसकी कोई गणना नहीं है, इतने कमल खिले हुए हैं, उन कमलों में से एक हम लोगों का भी मुख कमल है जो कथा को सुन करके विकसित होता है। और विशेष करके द्वादशी के दिन की बात की जा रही है, पुलस्त जी ने कहा राजन रथांतर कल्प की बात है, आपको पहले बता दिया है कि अलग अलग कल्प होते हैं, उसमें पिनाकधारी भगवान शिव मंदराचल पर्वत पे विराज रहे हैं, उस समय महात्मा ब्रह्मा जी स्वयं भगवान शिव के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कोई ऐसा व्रत बतलावे कि जिससे थोड़ी सी तपस्या करना पड़े, शॉर्टकट, थोड़ा काम करना पड़े ज्यादा फल मिल जाए, कम करना पड़े मोक्ष प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी के जब ने जब इस प्रकार का प्रश्न किया तो भगवान शिव ने कहा कि देखो द्वारिका के सभा में भगवान श्री कृष्ण जो है गंधर्वों और देवताओं के साथ बैठे थे, तो वहाँ उन्होंने एक व्रत को बतलाया था जो मोक्ष को प्रदान करने वाला है, मैं उसी व्रत को तुमको बतलाता हूँ। वह तिथि है समस्त पापों के नाश करने वाली द्वादशी तिथि, द्वादश्याम, उसको विषय में मैं बतलाता हूँ। यदि द्वादशी के दिन उपवास किया जाए तो सर्व सिद्धि हो जाती है और उसके देवता जो है नारायण है। लेकिन उसके लिए बतलाया कि माघ मास की दसवीं तिथि जब आए उसी दिन से अपने शरीर में घी और तिल दोनों लगाना चाहिए, तिल का विधान है, शरीर में तिल का उबटन लगाना चाहिए। षट तिला एकादशी आती है, माघ मास की जो एकादशी है वो षट तिला एकादशी है, उस दिन तिल का छह चीज होता है, तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का होम, तिल का भोजन और तिल का दान, ये षट तिला है। तिल के छह तरह से प्रयोग होते हैं, जो एकादशी आती है माघ मास की, जय महाराज वाली जो एकादशी आती है ना माघ महीने की, तो उसमें षट तिला एकादशी है। हाँ, तो तिल मिश्रित जल से स्नान का विधान बतलाया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखें तो जो शरीर में रुक्षता रहती है, शरीर में चमड़ी में फटती है, तो यदि तिल से स्नान करेंगे, तिल मिश्रित जल से, तो शरीर का जो चमड़ी है वो ठीक रहेगा। और नमो नारायणाय मंत्र से भगवान की द्वादशी के दिन तिल से स्नान करके पूजा करना चाहिए, फिर सर्वात्मने नमः करके उनके चरणों की पूजा, वैकुंठाय नमः करके मस्तिष्क की पूजा करनी चाहिए, ऐसे करके उनके 12-12 अंगों की पूजा करनी चाहिए, विहंग नाथाय कह के पूजन का विधान बतलाया है। और गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि नाना प्रकार के जो षोडश उपचार हैं उसके द्वारा पूजन करना चाहिए। लेकिन दसवीं से ही व्रत के लिए बतला दिया कि दसवीं को ही एक समय आहार ले करके, अवर औदुम्बर जो आता है, औदुम्बर, औदुम्बर आप लोग जानते हैं, उससे दातन करना चाहिए दसवीं के दिन। फिर एकादशी के दिन द्वादश कुल्ले करना चाहिए, दंत धावन नहीं करना चाहिए, दातन फाड़ने का विधान नहीं है, दोष लगता है। और द्वादशी के दिन पुनः द्वादश कुल्ले का विधान है, द्वादश गंडूषान कृत्वा 12 बार जल लेकर के दांत साफ कर लेना चाहिए। उसके पहले यदि हम दातन करते हैं तो उसके लिए वनस्पति के पास जाना चाहिए और वनस्पति से प्रार्थना करना चाहिए। जो कांट वाले वृक्ष हैं और जो दूध वाले वृक्ष हैं उन्हीं का दातन करना चाहिए। तो कांट वाले में बबूल आ जाता है और दूध वाले में औदुम्बर आता है। हाँ, और एक अपा मार्ग आता है, अपमृज्यते व्याधि अने नैति अपा मार्ग, चिचड़ी जिसको हम हिंदी में कहते हैं, अब यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, अंगेठी क्या कहते हैं, खिचड़ी, हाँ खिचड़ी कहते हैं। उस खिचड़ी के भी दातन करने से मुख की दुर्गंधि का नाश होता है और जल में रख करके आपोहिष्ठामयो भुव मंत्र से ऊपर मार्जन करना चाहिए, उससे रोग व्याधि नष्ट होते हैं। हाँ, और बुध की वह संविधा भी है, जो बुध ग्रह है वो शांत न होता हो तो बुध के लिए उसी से आहुति का भी विधान है। हाँ, वो अपा मार्ग, हाँ अंगेड़ा कहते हैं। अच्छा अच्छा और उपवास करके भगवान की जो है शेषशायी विष्णु की पूजा का विधान बतलाया और फिर बतलाया कि इतिहास और पुराणों की कथा सुनना चाहिए, द्वादशी को व्रत करना चाहिए और बढ़िया तोरण बनाना चाहिए, रात भर जागरण करना चाहिए और फिर त्रयोदशी को 13 गायों का दान विधान बतलाया है कि त्रयोदशी को 13 गायों का दान करना चाहिए। तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में आपको लाभ मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन वो क्या करते हैं, 100 रुपया एक गाय के लिए दान करते हैं, उसमें गाय का दाना नहीं आएगा, गाय के शरीर की तो बात दूसरी रही। तो इसके लिए कहा कि वित्त साक्ष्य नहीं करना चाहिए, आप कर रहे हो तो आपको संतोष हो, भगवान के नाम पर ठगो नहीं, ठगाओ ठीक है, ठगो नहीं, ठगाना अच्छा है, ठगना अच्छा नहीं है। और ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी और अथर्ववेदी, चारे चार वेदों के ब्राह्मणों को बुलाए और चारों से चार वेदों का पाठ कराने का विधान है, तोरण बनाए और पूर्व के द्वार पर ऋग्वेदी ब्राह्मण, व्यास जी महाराज ने वेदों का भी भाजन किया था, तो ऋग्वेद वाले को पूरब में बैठाएं, यजुर्वेद वाले को दक्षिण में बैठाएं, सामवेद वाले को पश्चिम में बैठाएं, अथर्ववेद वाले को उत्तर में बैठाएं और चारे चार वहां चारे वेदों का पारायण करें। अब आप ध्यान दें, इन व्रतों के साथ वेद कैसे जुड़ गए कि आप कुछ नहीं करेंगे इतना करेंगे तो चारे चार वेदों की रक्षा तो आपसे एक दिन हुई कि नहीं हुई, चारे चार वेदों के विद्वानों की जीविका मिली आपसे। और यहाँ सभा हुई थी तो गुरुजी ने कहा था कि वेद जब हम पढ़ते हैं तो जो उसकी ध्वनियां आती हैं, तरंगे आती है, तो उससे सुनने से हमारे अंदर के जो ज्ञान तंतु है वो चैतन्य हो उठते हैं, तो रोग नहीं होता। ये विदेशों में भी लोगों ने कहा और हमारे यहाँ तो चलते रहता है, हमारे यहाँ ब्रह्मर्षि में हमेशा वेद पाठ चलते रहता है, संस्कृत का पाठ चलता रहा, मैं इसीलिए बोल बोल के पाठ करता हूँ, नहीं तो आंख से देखे तो ऐसे 4 दिन में पूरा पुराण हो जाएगा, लेकिन उसमें हमको आनंद नहीं आएगा। जो बोल करके करने से क्या होता है, अंदर की जो इंद्रियां है ना वो स्वस्थ रहती है, जब अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूली अक्क अक्क करेंगे तो उससे भीतर का भी प्राणायाम की तरह से स्थिति बनेगी। तो इसलिए संस्कृत को सुनना बड़ी पुण्य की बात है, अर्थ न समझ में आए तो भी संस्कृत जो है वह हमको सुनने वाले को पवित्र करती है, क्योंकि वो बड़ी, संस्कृत का मतलब ही होता है जो सम्यक बनाई गई भाषा हो, संस्कृत हो, वही सम्यक कृतम इति संस्कृतम, जहाँ समानता है, जहाँ सहजता है, जहाँ संस्कार है, वह भाषा संस्कृत है। संस्कृत से आप अतिरिक्त भाषा बोले तो लिखा है कि अपभ्रंश है, उससे दोष लगता है, वह धर्म के प्रतिपादक नहीं होते हैं, लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको बोलने से हमें धर्म की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें कोई अशुद्धि नहीं, जितने उसके शब्द हैं सब साधित हैं, व्याकरण के दृष्टिकोण से परिमार्जित है। भर्तृहरि ने कहा है, बता दो अब चर्चा चली तो, शिष्टेभ्यः आगमात् सिद्धा साधवो धर्म साधनम्, जो शिष्ट लोगों से स्मृति के स्मृतियों से पुराणों से और वेद आदि शास्त्रों के द्वारा जो परिनिष्ठित है साधित भाषा है उसको बोलने से धर्म की उत्पत्ति होती है। और गौ के जगह आप गाय बोले तो उसे धर्म उत्पत्ति नहीं होगी, खाली भाषा बोध तो होगा, लोग गाय से गाय को जानेंगे लेकिन उससे धर्म उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए संस्कृत के साथ ही धर्म जुड़ा हुआ है, ऐसा आग्रह है। वेद के द्वारा जो विहित है वह धर्म है और वेद से जो विपरीत है वह ही अधर्म है। तो वेद की बात यदि किसी अन्य भाषा में कही गई हो तो क्रिया वो धर्म हो जाएगी लेकिन भाषा धर्म परक नहीं होगी। म्लेच्छो ये अपशब्द जो अपशब्द है वह म्लेच्छ है। हे अरयह के जगह असुरों ने हे अलयह कह दिया, र के जगह ल कर दिया। हाँ तो पराजित हो गए, ते असुराहा पराजिता भूभु। क्यों? आ तो मंत्रो ही न स्वरतो वर्ण तो वा, यदि स्वर से चाहे वर्ण से मंत्रहीन होता है तो वह उस अर्थ को नहीं कहेगा। सवाग वज्रो यजमानम ही नस्ती, वो वाग वज्र बन जाता है।